तो पिछले रविवार को हमने वैशंपायन महाभारत अंतर्गत आदि पर्व की समाप्ति की। आदि पर्व महाभारत के सबसे बड़े पर्वों में से एक है, बड़ा विशाल पर्व है। उसके बाद सभा पर्व आएगा और सभा पर्व के बाद वन पर्व होगा। और वन पर्व सबसे विशाल है, सबसे बड़ा पर्व है। तो आदि पर्व की समाप्ति हमने पिछले रविवार को की थी। तो उस कथा में थोड़ा सा पॉज देकर मैं कुछ हफ्तों तक आपको जैमिनी महाभारत से एक अति 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 दुर्लभ कथा सुनाऊंगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इस कथा का नाम है चंद्रहासोपाख्यान। और चूंकि अर्वाचीन समय में हमारे पास केवल वैशंपायन जैमिनी महाभारत का अश्वमेध पर्व ही उपलब्ध है, उसके अंतर्गत ये कथा है चंद्रहासोपाख्यान। नरेशन दो टाइप के होते हैं, आख्यान और उपाख्यान। आख्यान जैसे लंबा नरेशन जो होता है, जैसे महाभारत आख्यान, लंबा नरेशन, लंबी कथा। उसके अंतर्गत जो सब नरेशन होते हैं उसको उपाख्यान कहते हैं, उप आख्यान। वैसे जैमिनी महाभारत का मैंने आपको परिचय पहले भी दिया था, इसलिए विस्तार से इसका परिचय वापस नहीं दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत में उन्होंने दिग्दर्शन टीका भी लिखी। बृहद भागवतामृत उन्होंने खुद लिखा और उसी के ऊपर उन्होंने खुद की टीका लिखी जिसका नाम है दिग्दर्शिनी टीका। उस दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी जैमिनी महाभारत को श्रीमद् भागवतम के स्तर पर रखते हैं। ये पहले बता चुका हूं बट देयर माइट बी सम न्यू पीपल हियर तो वापस दोहराता हूं। और वही बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ को जैमिनी महाभारत के खील भाग के रूप में लिख रहा हूं, सप्लीमेंट। जैसे हरिवंश वैशंपायन महाभारत का खील भाग, उसी प्रकार से बृहद भागवतामृत जैमिनी महाभारत का खील भाग है, ऐसा सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं। और उसी में सनातन गोस्वामी दिग्दर्शन टीका में कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम के स्तर पर है। पल्लव पुराण में अंतिम खंड में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का महात्म्य बताया गया है, उसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई है बड़े विस्तार। तो भगवान के एक ज्ञानी भक्त है जिनका नाम है उद्धव, उद्धव गीता भागवतम के 11वें स्कंद में भी आती है जिसमें 1000 श्लोक हैं। साधारणतः लोग भगवद गीता को जानते हैं, भगवद गीता जो महाभारत में आती है द्रोण पर्व में, उसमें 700 श्लोक हैं। उसके अतिरिक्त और भी सविस्तर है उद्धव गीता, जो भगवद गीता के टॉपिक्स को और भी एडवांस तरीके से बताती है, उसमें 1000 श्लोक हैं। क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी भक्त थे भगवान के, इसलिए भगवान ने अपने अप्रकट होने के 7 दिन पूर्व वेदांत संहिता को एलिबरेट किया, उसको विस्तार से बताया। वेदांत सूत्र में 571 सूत्र है, प्रिसाइसली 571। तो उसी वेदांत को एलिबरेट किया भगवान ने उद्धव को 1000 श्लोक में, दैट इज उद्धव गीता। तो जब भगवान ने बताया कि आज से 7 दिन के बाद समुद्र का पानी ऊपर उठेगा और पूरी द्वारका नगरी डूब जाएगी, और मैं अपने पार्षदों और शक्तियों के साथ अप्रकट हो जाऊंगा। भगवान का कभी नाश नहीं होता, भगवान अक्षय अविनाशी, लेकिन वो अप्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी सूर्यास्त के बाद सूर्य नहीं दिखते हैं, तो सूर्यदेव हमारी दृष्टि से ओझल हो गए, लेकिन किसी और देश में तो दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब अपनी लीला को वाइंड अप कर देते हैं, तो हमारी दृष्टि से वो गायब हो जाते हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में उनकी लीला चलती है। तो भगवान की यह बात सुनकर उद्धव चिंतित हो गए। उद्धव ने भगवान से कहा कि भगवान, आप इतने समय, काफी लंबे समय पृथ्वी पर रहे आप, और आपने लोगों का कल्याण किया, और आप अचानक से चले जाओगे, और अभी कलयुग शुरू हो गया। इनफैक्ट महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो कैलेंडर वाइज लिखा जाए, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लेकिन भगवान की उपस्थिति के कारण कलयुग अपनी फुल इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा। तो उद्धव ने कहा कि अभी लोगों का क्या होगा, आपकी अनुपस्थिति में लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। तो भगवान भी सोचने लगे। भगवान ने भी सोचा कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ रास्ता करना चाहिए। उस समय एक पद्म पुराण में वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी शक्तियां सभी पार्षदों के साथ श्रीमद् भागवतम में प्रविष्ट हो गए। श्रीमद् भागवतम जो नैरेशन अभी हमारे सामने उपलब्ध है, शुक्ल गोस्वामी के मुखारविंद से निकला हो, इसलिए उसको बोलते हैं निगम कल्प तरो गलितम फलम शुक मुका अमृत द्रव संयुतम पीपद भागवतम रसमाद मुहुर ऋषिक भू विभावका। निगम कल्प तरो गलितम फलम, निगम कल्प तरो, वेदों में आगम और निगम दो सेक्शन है, उसमें निगम ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो निगम को कल्प तरु के साथ तुलना की गई है, उसका परिपक्व फल है भागवतम, जो शुक्लदेव गोस्वामी के मुख से स्पर्श होने के कारण और भी मीठा हो गया। जब फल तोते के द्वारा खाया जाता है तो और मीठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है वो शुक्लदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कहा गया, उसकी वजह से और मीठा हो गया। माने भागवतम भगवान से अभिन्न है। पद्म पुराण में बात स्पष्ट बताई कि श्रीमद् भागवत पुराण भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान सब अपनी शक्तियों के साथ और पार्षदों के साथ अपने आयुधों के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और तब से वो भागवतम हमारे सामने उपलब्ध है कलयुग में हमारा कल्याण करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम के एक जगह तात्पर्य में प्रथम स्कंध में कि भागवतम इतना महान शास्त्र है कि कोई व्यक्ति भगवान के साक्षात उपस्थिति से जो फल प्राप्त कर सकता है, भगवान साक्षात उपस्थित है, उस उपस्थिति से उन संघ से जो लाभ प्राप्त कर सकता है, वही संघ वो श्रीमद् भागवतम के संघ से प्राप्त कर सकता है, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। इतना महान शास्त्र है, इससे अधिक महान शास्त्र तो है ही नहीं। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से मैंने इसको साक्षात्कार किया है और समाधि मैंने इसको प्राप्त किया है, जिसको नाम दिया उन्होंने बृहद भागवतामृत। वो कह रहे कि मैं इसको जैमिनी महाभारत के खील भाग के रूप में लिख रहा हूं, और वो पूरा ग्रंथ है जैमिनी और जन्मेजय के वार्तालाप के बीच में, अर्थात उससे पूर्व जैमिनी ने महाभारत सुनाया जन्मेजय को, जिसका मेंशन उसमें करते हैं सनातन गोस्वामी, और कहते हैं दिग्दर्शनी टीका में कि ये जैमिनी महाभारत जो है वो श्रीमद् भागवतम के स्तर पर, ये सनातन गोस्वामी का स्टेटमेंट है, ये कोई विंसिकल बात नहीं कर रहे हैं। भले ये लुप्त तो हो चुका है, एक ही पर्व अवेलेबल है अभी, लेकिन वो महाभारत जैमिनी का सुनाया हुआ महाभारत अनलाइक वैशंपायन महाभारत भागवतम के स्तर पर, अर्थात जैमिनी का सुनाया हुआ महाभारत अगर हम सुनेंगे तो जो फल भागवतम से सुनने से मिलेगा वही फल ये सुनने से भी मिलेगा। इफ ए इक्वल टू बी एंड इफ बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी, है ना, कॉमन सेंस है। तो ये बहुत महान ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भगवान की शुद्ध भक्ति की सीधी बात हुई। तो जैमिनी का सुनाया हुआ महाभारत भी 100,000 श्लोक में ही था, पंडित लोग कहते हैं कि जितना वैशंपायन का बड़ा था महाभारत, उतना ही महाभारत ये भी बड़ा था, अर्थात कम से कम 1,00,000 श्लोक। लेकिन अभी लुप्त हो चुका है, 4,000 श्लोक अवेलेबल है हमारे सामने अश्वमेध पर्व के रूप में। उस अश्वमेध पर्व के अंतर्गत 10 अध्याय हैं चंद्रहासोपाख्यान के। पंडित लोग कहते हैं, गौर से सुनिएगा, जो संस्कृत के स्कॉलर लोग, वो कहते हैं कि इस उपाख्यान का वर्णन, यहां तक कि चंद्रहास का वर्णन, किसी और ग्रंथ में नहीं पाया जाता, केवल और केवल जैमिनी महाभारत में ही पाया जाता है। अर्थात ये अति अति दुर्लभ उपाख्यान है जो 10 अध्याय में यह वर्णित हुआ है। और इस उपाख्यान का फलश्रुति मैं आप लोगों को पहले सुनाऊंगा, पहले आपको मैं इसका लड्डू दिखाऊंगा, इसे सुनने से क्या फल मिलता है तो जरा गौर से सुनिए, ताकि हमें ये गौर से सुनने की प्रेरणा मिले। और इनफैक्ट 10 नाम अपराध में से एक अपराध ऐसा है कि श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि में वर्णित मातोक्तों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होना, उसको अतिशयोक्ति समझना, ये भी एक नाम अपराध। तो शास्त्र में कभी किसी भी वस्तु में अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं आपको इसका चंद्रहासोपाख्यान श्रवण करने का महान फल बताता हूं, तो सुनिए आप, प्रेय और श्रेय दोनों की प्राप्ति हो सकती है। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक, यहां लिखा है इतिहास इतिहासम इमं भक्त्या यह शुणोति पठत्यपि सभुक्त्वा विविधान भोगान विष्णुलोके महीयते। दिस इज द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट। कहते हैं कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस इतिहास को पढ़ता अथवा सुनता है, किसको, चंद्रहासोपाख्यान, वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। माने यहां प्रेय और श्रेय दोनों की प्राप्ति होगी। प्रेय मान इन लोक में सब प्रकार के भौतिक सुख पाना, जिसके लिए सब लोग लालायित रहते हैं, और श्रेय जिसके लिए कोई लालायित नहीं रहता है, विश्वलोक में प्रतिष्ठित होना, वैकुंठ धाम प्राप्त होना। तो इस कथा के भक्तिपूर्वक श्रवण से दोनों प्राप्त हो सकता है। यदि जैमिनी ये चीज कह रहे तो यह होता है, और ऐसे विश्वास के साथ सुनना वही भक्ति है। भक्ति माने डेवलपमेंट ऑफ फेथ, उसको हमारे गुस्सों में लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर उसको और एलेबरेट किया इस फलश्रुति को, जैमिनी कहते हैं कि जो मनुष्य चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसे बल और आयु की प्राप्ति होती है, मटेरियल है लेकिन फल है, उसे बल और आयु प्राप्त होता है, तथा सदाचारी दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाभारत में बताया कि पुत्र प्राप्ति के बिना संगति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्र अपने पिता को पुत्र नामक नरक से बचाता है, उसका प्राण करता है, पुत्र। लेकिन अगर पुत्र भी, चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही स्थान से निकलते हैं। चाणक्य बहुत तीखे थे स्वभाव के, उनकी वाणी बहुत तीखी थी, क्योंकि ब्राह्मण तीखे होते हैं बोलने में, लेकिन उनका दिल बड़ा कोमल होता है। चाणक्य कहते हैं कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही स्थान से निकलते हैं। यदि पुत्र अपने बाप का जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से उद्धार नहीं करता तो वह मूत्र के समान। हाउ ट्रू, कितना सही बताया है ना। इसलिए अगर किसी मनुष्य को विष्णु भक्त पुत्र प्राप्त हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक तो ऐसा पुत्र होता है जो पुण्य कर्म इत्यादि करता है, कर्मकांड वगैरह करता है, ठीक है, वेदों में इसका वर्णन किया है ऐसा करके, जैसे महाभारत में भी वर्णन किया है कि पुत्र इस लोक में यज्ञ यागादि करके अपने मृत पितरों को स्वर्ग में आरूढ़ कर देता है सत्कर्म करके, लेकिन उसमें से तो पतन होता है, क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। लेकिन एक पुत्र ऐसा होता है जो विष्णु भक्ति करके अपने पितरों का उद्धार करता है, विष्णु भक्ति के माध्यम से जो गति प्राप्त होती है उसका कभी ह्रास नहीं होता, उससे कभी पतन नहीं होता। इसलिए व्यक्ति पुरुष को यदि वो गृहस्थ है उसके लिए अब पूरे जीवन में, गृहस्थ जीवन में सबसे अहम बात यह है कि उसको विष्णु भक्त पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र या पुत्री जो भी है विष्णु भक्त होनी चाहिए संतान। चाणक्य कहते हैं कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं लेकिन उससे क्या इल्यूमिनेशन मिलता है, कोई प्रकाश मिलता है उससे? अनगिनत तारे हैं आकाश में लेकिन एक चंद्रमा काफी है पूरे आकाश मंडल को प्रकाशित करने के लिए। अर्थात बहुत सारे पुत्र प्राप्त करने से क्या लाभ है, एक ही सपुत्र प्राप्त करो, सुपुत्र प्राप्त करो जो विष्णु भक्त हो। तो चंद्रहासोपाख्यान के गंभीरता से श्रद्धा से श्रवण किए जाने पर जो फल मिलता है उसमें लिखा है कि श्रोता को बल और आयु की प्राप्ति होती है और उसको सदाचारी दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्त होगी। ब्रह्मचारी की बात अलग है, ब्रह्मचारी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं उनको विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। अभी आप बोलेंगे जो लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, अभी तक श्रवण नहीं किया इस कथा का, बच्चे पैदा कर चुके हैं उनका क्या होगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा? नहीं, इस कथा में इतना महान फल है, इतनी शक्ति है कि अगर पुत्र उत्पन्न हो भी गए हैं तो पुत्रों का बाप अगर इस कथा का श्रवण करेगा उनके बेटे भक्त बन जाएंगे, क्योंकि यहां लिखा कि उनको विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। अंत समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ हो जाएगी। कृष्णे भक्ति ही सुदृढ़ा यंत काले, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि मृत्यु के समय हमारे जिस वस्तु के ऊपर चिंतन होता है उसी प्रकार से हमारी गति होती है। अंत समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण में सुदृढ़ हो जाएगी जिससे भगवान वासुदेव भवसागर से उसका उद्धार कर देंगे। तो ये चंद्रहासोपाख्यान श्रवण करने का ये महान फल है, सभी वैष्णवी कथाओं में इसका ऐसा फल श्रुति होता है क्योंकि यहां अभी चंद्रहासोपाख्यान की बात करें इसलिए आपको मैंने भली बात ही इसका फल श्रुति बताया। तो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको पहले दिया था कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त तो हुआ तो युधिष्ठिर महाराज जो भी खून खराबा हुआ उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराने लगे, उनको उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने यौवनाश्व को जीतकर मेघवर्ण, भीमसेन और वृषकेतु जो कर्ण का बेटा है तीनों ने मिलकर घोड़ा प्राप्त किया था और वो घोड़े को छोड़ दिया था अलग अलग नगर में जाने के लिए। तो ये उसका बैकग्राउंड है। तो जयमिनी सुना रहे इस कथा को जन्मेजय कि सारस्वत कूर से छुटा हुआ वो घोड़ा आगे बढ़ा और वो चलते चलते कुंतलपुर जा पहुंचा। सारस्वत कूर पहले उसके वहां तक जो घोड़ा कैसे पहुंचा वो पहले की कथा है, वो किसी और समय आपको मैं वर्णन करूंगा। तो जयमिनी कहते हैं कि ये जो कुंतलपुर है वो चंद्रहास का बड़ा सुंदर ही नगर था और उस घोड़े के पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए कौन कौन लोग तैनात थे उनके नाम बताएं। श्री कृष्ण खुद, प्रद्युम्न जो मूल कामदेव है जो खूब पराक्रमी है और प्रद्युम्न वास्तव में विष्णु तत्व है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया है, विष्णु से अभिन्न है। अर्जुन, फिर हंसध्वज, ताम्रध्वज, प्रवीर, अर्जुन कुमार बब्रुवाहन, बब्रुवाहन का शौर्य इसमें वर्णन किया है जैमिनी महाभारत में। गंगा के साप से अर्जुन का बब्रुवाहन ने छिरछेद कर दिया। तो उलूपी और चित्रांगदा विलाप कर रहे हैं, उस समय उलूपी के सजेशन से बब्रुवाहन एक संजीवनी मणि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है जो नागलोक में विद्यमान है नीचे की तरफ। तो वहां के लोग उसको मना कर देते हैं उस वो मणि देने के लिए। उस समय बब्रुवाहन अपनी मैसिव मिलिट्री लेकर नागलोक जाता है, रतातल तक जाता है, सोचिए, और छक्के छुड़ा देता है उनके। तो ये महान बब्रुवाहन केवल पृथ्वी पर ही इसका शौर्य प्रख्यात नहीं था, इवन बिलो स्वर्ग में इसका शौर्य सबको पता था। और वृष केतु जो 16 साल का लेकिन बड़ा पराक्रमी, ये सब लोग घोड़े के रक्षा के लिए तैनात थे। और इससे पूर्व यहां जो ताम्रध्वज का हमने नाम लिया, ताम्रध्वज और मयूरध्वज, ताम्रध्वज का के पिताजी मयूरध्वज, तो ताम्रध्वज ने उसको घोड़े को पकड़ लिया था इन लोगों को अर्जुन के घोड़े को पहले, उस समय भगवान ने इंटरवीन करके समझौता करा दिया था। और मयूरध्वज क्योंकि खुद वैष्णव थे और खुद भी वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, वो उन्होंने कैंसिल करके अपना भी घोड़ा अर्जुन को दान दे दिया। माने इस समय अर्जुन के दो दो घोड़े थे, एक तो खुद का जो पहले यौवनाश्व से लेकर आए थे वो, और ये दूसरा जो था वो जो मयूरध्वज का था। तो वो घोड़े घोड़ा दो जो घोड़े थे चलते चलते कुंतलपुर में प्रविष्ट हुए और अचानक से दोनों घोड़े गायब हो गए, इन लोगों की दृष्टि से ओझल हो गए। तो सबके ऊपर व्यामोह छा गया, सब लोग अंदर बातें करने लगे कि कहां चले गए दोनों घोड़े, कहीं पाताल में तो नहीं चले गए, कहीं आकाश में तो नहीं चले गए। ऐसे बात करते करते वो आकाश में देखने लगे, और जिस समय उन्होंने आकाश में देखा टू देयर सरप्राइज उनको आकाश से एक तेजस्वी पुरुष नीचे उतरते हुए दिखाई दिया। एनी वाइल्ड गेस कौन हो सकता है वो? आकाश से एक ही व्यक्ति उतरता है रथ के बिना, द ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन नारद मुनि, जो उद्दीप्त तेज से संयुक्त थे और दूसरे सूर्य की तरह दिखते थे। वो वेद वेदांगों के पारंगत थे, देवर्षि थे। नारद मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो कलह प्रिय है, उनको झगड़ा देखना बहुत पसंद है, ऐसा टीवी पर दिखाते हैं, गलत नहीं है, जैमिनी भी कहते हैं। नारदम कलह प्रेतुम वैष्णवानाम गरीयसम, वैष्णव के लिए गौरव के स्थान है नारद मुनि, लेकिन कलह प्रेतुम है, कलह प्रिय है। कलह क्यों करवाते हैं? लोगों के कल्याण के लिए। देखिए नारद मुनि ने जितने भी झगड़े करवाए हैं उन सबसे अल्टीमेटली कल्याण ही हुआ है लोगों का, आप पुराण में पढ़ सकते हैं। पर यह वर्णन किया है, कृष्ण माधव गोविंद नृसिंह मधुसूदन जपंतम मनसा नित्यम भक्ता केवलयायुतम। देखिए जैमिनी कितने भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, कितना, मैं आपको एक बात बताना भूल गया उसके, जैमिनी की महान पोजिशन। भगवद गीता में विभूति योग में भगवान कहते हैं कि वेदानाम साम वेदोस्मि, तो चार वेद हैं, चार वेद में से एक है सामवेद। भगवान कहते हैं कि चार वेदों में से सामवेद मैं, और भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आता है कि व्यास जी ने सामवेद के विस्तार के लिए जैमिनी को लगाया था। यही जैमिनी जो सुना रहे हैं ये महाभारत, वही जैमिनी। और सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शनी टीका में कहते हैं कि सामवेद जो है वो भक्ति सिखाने वाला वेद है, भले ही उसमें बाह्य रूप से ऐसा लगता है उसमें कर्मकांड का वर्णन किया है, लेकिन उसमें जैमिनी का एक डेफिनेटिव पर्पस था, एक उन्होंने एक सिस्टम बनाई थी कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उसको ग्रेजुअली वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके विष्णु भक्ति के स्तर पर आते हैं। इसलिए सामवेद का एक्सक्लूसिव पर्पस था लोगों को भक्ति के स्तर पर लाना, विष्णु भक्ति के स्तर पर लाना, लोगों को वैष्णव बनाना, वो सामवेद का एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव था। तो उसका विस्तार जैमिनी ने किया। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं, तो हम इसका लॉजिकल इंफरेंस निकाल सकते हैं कि सभी मुनियों में, क्योंकि व्यास जी के चार शिष्य थे वैशंपायन जैमिनी सुमंतु पैल, तो चूंकि चार शिष्यों ने चार वेदों का विस्तार किया, तो चूंकि अपने आप को वो भगवान सामवेद के साथ तुलना कर रहे हैं, तो मतलब बता रहे कि वो मुझे सबसे प्रिय है। उसी प्रकार से हम लॉजिकली हम इंफर कर सकते हैं कि व्यास जी के चारों शिष्य में से कौन प्रिय है भगवान को? जैमिनी। और सनातन गोस्वामी उसकी पुष्टि करते हैं क्योंकि वो अपनी दिग्दर्शनी टीका में जैमिनी को शुद्ध वैष्णव कहते हैं। यहां तक कि वो जो बृहद भागवतम के अंत में वो अपना नरेशन कंक्लूड करते हैं जन्मेजय को, उसमें श्री कृष्ण को एड्रेस करते हैं अंत में गोपराज तनय, श्री गोपराज तनय। उसमें सनातन गोस्वामी बहुत एक कॉन्फिडेंशियल बात बताते हैं अपने टीका में। वो कह रहे हैं कि चूंकि और उस समय जैमिनी गोपियों के भाव में आकर बोल रहे थे कि गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है उसका वर्णन कर रहे थे उसमें जैमिनी जन्मेजय को। तो सनातन गोस्वामी कह रहे कि चूंकि जैमिनी इस समय माधुर्य रस में है, गोपियों के भाव में है, इसलिए भगवान को डायरेक्टली नाम से नहीं पुकार रहे। और चूंकि भगवान के पिता जो अपने जो स्त्री के लिए जो पति और पति का जो पिता होता है उसको नाम से नहीं बुलाते, उनको बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हो, तो इनडायरेक्टली बोलते, इसलिए बोलते हैं श्री गोपराज तनय। गोपराज तनय, गोपो का राज कौन है, राजा कौन है, नंद महाराज, ग्वालो का राजा नंद महाराज, उनका बेटा श्री गोपराज तनय माने श्री कृष्ण। तो भगवान के जो भगवत भक्ति जो है उसमें माधुर्य उसमें पूरी तरह से डूबे हुए थे जैमिनी। तो सुना रहे कि नारद मुनि के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण माधव गोविंद नृसिंह मधुसूदन जपंतम मनसा नित्यम भक्त्या केवलया युतम, कि अनन्य भक्ति भाव से इन नामों का जप करते थे। कृष्ण माधव गोविंद नृसिंह मधुसूदन, फिर एक दूसरा भी गीत है भक्ति विनोद ठाकुर का, नारद मुनि बाजय बिना राधिका रमण नाम है। नारद मुनि जो अपनी वीणा बजाते हैं तो उसमें राधिका रमण के नाम निकलते हैं माने श्री कृष्ण के नाम निकलते हैं। तो नारद मुनि इसके लिए प्रख्यात है, हमेशा नारायण नारायण नाम का जप करते हैं। तो निकट आने पर अर्जुन आदि सभी वीरों ने पृथक पृथक रूप से उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया। सभी ने नारद मुनि का स्वामी की तरह सत्कार किया क्योंकि तो देवर्षि हैं और वैष्णव है, परम वैष्णव है नारद मुनि, तो उनका भगवान की तरह साक्षात हरि प्रेम समस्त शास्त्र, जो सत्कार साक्षात हरि को दिया जाना चाहिए वही सत्कार इन अर्जुन आदि वीरों ने दिया। और उनसे पूछा कि पूज्यपाद देवर्षि आप कहां से पदार हैं, आपने हमारे घोड़े को देखा क्या, वो आपके दृष्टिपथ में आया, हमारे दो घोड़े थे, उनको लगा कि शायद वो आकाशमार्ग से कहीं ऊपर चले गए क्योंकि यहां तो दिखाई नहीं दे रहे आसपास। तब नारद जी ने बताया, नारद जी को शाप है किसी भी एक जगह नहीं ठहर सकते, हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं और उनको अंतरिक्ष में जाने के लिए ब्रह्मांड में घूमने के लिए किसी स्पेसक्राफ्ट की जरूरत नहीं है या पंख की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपनी इच्छा से वो, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, किसी प्रकार का भौतिक बंधन उनको नहीं और त्रिकालज्ञ है। नारद मुनि तीनों काल के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो कह रहे कि जहां परम विष्णु भक्त चंद्रहास कुंतलपुर में राज्य करता है वही सुरक्षित नगरी कुंतलपुर में तुम्हारे घोड़े प्रविष्ट हुए हैं जा पहुंचे। फिर वो आगे बता रहे हैं, परिचय और दे रहे हैं नारद मुनि। चंद्रहास केरल देश के राजा का पुत्र था लेकिन उसको पाला पोता कुलिंद ने, आगे चलकर कुंतलक राजा उसको राज्य देकर वन को चले गए और उसके जो राजमंत्री थे दुष्ट बुद्धि उसकी बेटी विषया के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चंद्रहास और विषया का रोमांस इसमें वर्णन किया है, वेरी डिवाइन। इनफैक्ट इस पूरी स्टोरी में सब प्रकार के रस हम पढ़ेंगे, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, रोमांस है, शाइवलरी है माने शौर्य रस है, सब कुछ है इसमें, इसके ऊपर मूवी बन सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और भगवान लक्ष्मीपति की कृपा से उनको कुंतलपुर का राज्य प्राप्त हुआ है। नारद मुनि और कह रहे हैं क्योंकि वहां बड़े बड़े शूरवीर योद्धा खड़े थे उनके सामने, बभ्रुवाहन, वृषकेतु, ताम्रध्वज, तो मयूरध्वज का बेटा था। और प्रद्युम्न खुद, प्रद्युम्न की शौर्य के बारे में वर्णन श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में और हरिवंश में पाया जाता है। हरिवंश में यदुवंशियों का शौर्य का वर्णन पढ़ेंगे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या उनका शौर्य था, इतना पावरफुल थे वो लोग योद्धा। नारद मुनि कह रहे हैं कि चंद्रास इतना बलशाली है, इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली है कि आप लोग उसके सामने सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है। इसका कारण क्या है? चंद्रहास बिकॉज ही वॉज ग्रेट वैष्णव। तो नारद जी की बात सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। वो कहने लगे कि नारद जी ये चंद्रहास कौन है, और जो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पूजित जो उनसे प्रसन्न होने वाले वासुदेव हैं उनके वो भक्त कैसे बने, उनका सारा चरित्र महान विस्मयजनक है, इसका सविस्तर वर्णन करिए। नारद जी कहते हैं, नारद को विस्मय हुआ अर्जुन की बात सुनकर। नारद जी कह रहे हैं कि ये कैसा समय है, तुम जरा सोचो अर्जुन, तुम्हारे दो दो घोड़े लापता हैं, तुम्हारे पास ये कथा सुनने का अवकाश है। युधिष्ठिर महाराज वहां चिंतित है इस घोड़े को लेकर, तुम्हें जल्दी ये घोड़ा लेकर उनके पास लौटना है, तुम्हारे पास अभी अवकाश है कथा सुनने का। अर्जुन ने बहुत पते की बात कही। अर्जुन ने कहा कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतना महान युद्ध होने वाला था उस समय भी उभयो सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मैंने श्री हरि से भगवद गीता की कथा का श्रवण किया था, उस समय तो मुझे अवकाश मिल गया था, तो अभी अवकाश क्यों नहीं है। फिर आगे एक अर्जुन श्लोक बना, वो एक बात बताते हैं सुनिए। बोला कि सत कथा श्रवण ये शाम उमकामना समयो भवेत वंचिता से ही काले न नरा ही अल्पायुषो भोगी। बहुत अच्छी बात बताते हैं अर्जुन, कहते हैं कि इस धरातल पर मनुष्य की आयु थोड़ी है, और उस थोड़ी सी आयु में भी पुरुषों को सत कथा श्रवण के लिए समय नहीं मिलता है तो जान लेना चाहिए कि निश्चित रूप से वो काल के द्वारा ठग लिया गया है ना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सत कथा श्रवण ये शाम पुमसाम न समयो भवे वंचिता से ही काल है नरा यल्पायुषो भूमि। इस समय इस पृथ्वी पर हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी साल, कलयुग में तो 100 साल भी नहीं जीते लोग, 100 साल अगर जी गए तो पेपर में न्यूज आ जाता है ना, तो मैक्सिमम 80 ईयर्स, उसमें भी कितना हेल्दी रहते हैं कुछ पता नहीं, तो बहुत थोड़ा समय है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज भागवतम के सातवें स्कंद में बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, या मैं नरेट नहीं करूंगा कि मनुष्य किस प्रकार से अलग अलग स्तर पर अपना समय व्यय कर देता है, बाल्यावस्था में क्रीड़ा के द्वारा, युवावस्था में अलग अलग प्रकार से, वृद्धावस्था में रोग उसको पकड़ लेता है इत्यादि, तो उसके पास भक्ति करने के लिए समय है ही कहां, माने आयु बहुत कम है। उस अवस्था में यदि उसके पास सत्कथा श्रवण का समय नहीं है तो निश्चित रूप से काल ने उसको ठग लिया, माने आप प्रयत्न पूर्वक मुझे इस कथा का श्रवण करो कराओ। इससे एक सिमिलर एक श्लोक उस भागवत में भी आता है, आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यन अत्तम चयनसो तस्य यक्षणुनी का उत्तम श्लोक वाग्या है ना। भागवत में क्या बोला है, आयुर्हरति वे पुंसाम, सूर्यदेव अपने उदय और अस्त के साथ लोगों की आयु को हर लेते हैं सिवाय उनके जो लोग उत्तम श्लोक की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी आयु को नहीं हर सकता क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे दिव्य हो जाता है। अर्जुन बोल रहे हैं कि विप्र माने ब्राह्मण, विप्र इंद्र माने बेस्ट अमंग ब्राह्मण, कि मेरा घोड़ा भले ही चला जाए, अश्वमेध यज्ञ भले ही मेरा रुक जाए, लेकिन मुझे विष्णु संबंधी कथा का सम्यक रूप से मुझे श्रवण करना है और सभी को करना चाहिए, क्योंकि विष्णु संबंधी कथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। एक अश्वमेध यज्ञ करने में तो चक्के छूट जाते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि हरि कथा का श्रवण सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। हम लोग यहां क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, वही हरि कथा का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। राधा और गिरधारी को हम अनुनय नहीं करते हैं उनके सामने बिलक कर, कि हमें जन्म जन्मांतर में ऐसी ही वैष्णवों से हरि कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे, इसके अतिरिक्त हमें और कोई लालसा नहीं है। तो नारद कह रहे हैं, नारद ने जब देखा कि अर्जुन का दृढ़ निश्चय है कि वो इस कथा का सविस्तर श्रवण करना चाहते हैं, तो नारद जी सुना रहे हैं कि पास प्राचीन समय की बात, इन द डेज ऑफ योर, ऐसे इंग्लिश में कोई स्टोरी सुना था, इन द डेज ऑफ योर, प्राचीन समय में एक परम बुद्धिमान राजा थे केरल देश के, जिसका नाम था सुधार्मिक। केरल देश अभी भी है, केरल लोग बोलते हैं साउथ में, बड़ा पराक्रमी राजा और शास्त्र विधि से अपनी प्रजा का रक्षण करता हुआ वो शासन करता, राज्य का संभालता। उसका एक बड़ा ही भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, या स्पेसिफिकली लिखा है तस्य पुत्रो भवन मूल नक्षत्रे बहुभाग्यवान। यूजुअली ऐसा बिलीफ है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बेटा अपने माँ बाप के लिए भारी होता है। अम्मा जी सही बात है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो ये जो चंद्रहास था वो भी मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, लेकिन यहां शब्द का प्रयोग किया गया है बहुभाग्यवान, कि बहुभाग्यवान था। क्यों है वो उसका वर्णन करेंगे आगे। अभी उस पुत्र के जन्म लेने पर थोड़े दिन के बाद ही शत्रुओं ने राजा को उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्राणांतक के समय, मृत्यु के समय कफ आदि धातु मनुष्य को घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। हमारे शरीर में कितने धातु हैं? तीन हैं, कफ पित्त वायु। तो मृत्यु के समय ये तीनों धातु हमारे शरीर के नौ द्वार को चोक कर देते हैं, बड़ी घुटन महसूस होती है। तो उसी प्रकार से सुधार्मिक को भी घेर लिया शत्रु राजाओं ने और उनके साथ युद्ध करता करता सुधार्मिक मारा गया और उनकी जो प्यारी पत्नी थी वो भी आनंद पूर्वक उनके साथ सती हो गई। ऐसा सिस्टम हुआ करता था, तो लोग जो क्षत्राणी होती थी अपने पति के मृत्यु पर अपने पिता के साथ चिता पर अपने पति की चिता के साथ चढ़ जाती थी, मृत्यु को प्राप्त होती। ये फोर्सफुल नहीं हुआ करता, समझ रहे हैं, ये बलपूर्वक नहीं होता। पति की जो सिस्टम में बलपूर्वक नहीं था वो वॉलेंटरी हुआ करता था। तो उनके साथ सती हो गई। अभी ये बच्चा चंद्रहास अनाथ हो गया और शत्रु राजाओं ने तो इस पूरे राज्य को जीत लिया, इसका यहां कोई नहीं, इस बच्चे का अनाथ है, इसका मां नहीं बाप नहीं कोई नहीं, केवल उसके एक धात्री थी, धाई जिसको बोलते हैं, धात्री मान नर्स भी कह सकते हैं आप, उसके पहले से उसके रखवाली करती थी, उसको खिलाती थी जब छोटी थी, छोटा था चंद्रहास। और जिस समय यह घटना घटी, चंद्रहास वॉज जस्ट एन इन्फेंट, ही वॉज जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड, छह महीना भी नहीं हुआ था उसे, उस समय अनाथ हुआ। सोचिए इतनी कम आयु में ना हो सकता, अभी कहां से कहां भगवान उसको कहां लेकर जाएंगे अभी का श्रवण करेंगे। तो जो धाई थी उसको लेकर कुंतलपुर पहुंची, क्योंकि ये जो था केरल देश वो कुंतलपुर के पास में था, उसके पड़ोस वाला राज्य था ये। तो शकुंतलपुर में आई और ये बालक उसे नगर का राजश्री का भावी बलवान पति था। यहां नारद मुनि हिंट दे रहे हैं कि भविष्य में इसी राज्य का वो राजा बनने वाला है कुंतलपुर का। तो ये धात्री थी वो तो कुंतलपुर में कूटना पीसना आदि काली मजदूरी कर करके उसने बच्चे को पाला पोषा, समझ रहे हैं, इसके तो मां की तरह कर रही है उसको, उसने पैदा तो नहीं किया लेकिन मां की तरह ही उसको खुद मेहनत मजदूरी करके तीन वर्षों तक यत्न पूर्वक उसने उसको पाला। और तीन वर्षों के बाद बिचारी अपने राजा सुधार्मिक को याद करते करते विलाप करते करते मर गई। अभी इस बच्चे का और कौन है, इसका दीन बंधु दीनानाथ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यद्यो भी सभी आश्रयों से रहित हो गए, केवल एक ही आश्रय बचा, दीन बंधु दीनानाथ जगतपति जनार्दन। तो उसने उसकी अवस्था तीन वर्ष की थी, यहां उसके शरीर का वर्णन किया क्योंकि यह राजा का बेटा है, क्षत्रिय का बेटा था, राजा का बेटा था, तो उसका शरीर शुभ लक्षणों से लक्षित गौर वर्ण का था, गोरे रंग का, तो जैसे तपाया हुआ सोना होता है। और इसके शरीर में यह विलक्षण बात थी कि उसके बाएं पैर में एक और पांच उंगलियों के अतिरिक्त और छठी उंगली भी थी। तो ये बच्चा जो था अभी कुंतलपुर में अकेला ही घूमता रहता, भाई तो मर गई, क्या वर्णन किया है कि उस नगर की स्त्रियां और वहां के लोग इतने सज्जन थे कि कुछ स्त्रियों ने इसमें उनमें से कुछ स्त्रियों ने इस बच्चे को स्नेह पूर्वक इसका पालन पोषण किया। जब तक वो पांच वर्ष का नहीं हुआ, तीन साल से पांच वर्ष, मैंने दो साल तक लगाता, कोई स्त्री उसको स्नान कराती, कोई स्त्री उसको चंदन आदि से उसको अनुलेप करती, कोई उसको कपड़ा पहनाती, कोई उसको प्रसाद खिलाती, किसी के साथ सो जाता था रात में। ऐसे इस प्रकार से लोगों के घर में जाते जाते ही पला बड़ा हुआ, ऐसे पांच साल का हो गया। और अपने समवयस्क दूसरे जो बालक थे उनके साथ खेलकूद करता रहता, कोई उसके लिए सुंदर अंगरखे बना देते थे, कोई उनके लिए सुंदर टोपी बना देते थे। तो इस प्रकार से वो पांच साल का हो गया। एक दिन वह परम पवित्र बालक जूते और रेशम की डोरी लगाए हुए स्वेच्छाचार करते हुए स्वेच्छानुसार घूमता घामता उस राज्य के राज्यमंत्री दुष्ट बुद्धि के महल में प्रवेश किया। दुष्ट बुद्धि इस स्टोरी का मेन विलन, इस स्टोरी का हीरो कौन है? चंद्रहास। और विलन है दुष्ट बुद्धि। इसका नाम एकदम अप्रोप्रिएट है, दुष्ट बुद्धि। ये सही में विलन था, उसकी बुद्धि ऐसी थी। लेकिन उसका बेटा मदन, महान वैष्णव, हम आगे उस कौतुक सुनेंगे, बड़ी विस्मयकारी कथा है। तो कुछ अच्छे संस्कार से ये जो दुष्ट बुद्धि था, कभी कभार अपने घर में पवित्र ब्राह्मण और मुनियों को बुलाता था, उनको भोजन कराता था। तो दैववश ऐसा हुआ कि वो चंद्रहास घूमता घामता उसी समय उस महल में जा पहुंचा, दुष्ट बुद्धि के उस महल में, जिस दिन जिस जगह कुछ ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ मुनि लोग आए हुए थे भोजन के लिए। और इस बालक का अनुपम रूप देखकर, इसका सात्विक रूप देखकर सब मुनिजन विस्मय में पड़ गए, इतना मनोहर बालक था ये। तो ऐसा होता ना कि कोई प्यारा सा बच्चा होता है तो हमें उसको गोद में लेने की इच्छा होती है, उसको खिलाने की इच्छा होती है, अगर हम खा रहे उस समय आ जाते हैं उसको साथ में भोजन में बिठा लेते हैं। तो उसी प्रकार से मुनिजनों ने इस बच्चे को साथ में बिठाकर भोजन कराया। दुष्ट बुद्धि जो था उसकी लालसा भी भौतिक, इसलिए भौतिक इच्छा से इस मुनियों की सेवा कर रहा है। तो उनको अर्घ्य पाद्य आदि अर्पित करके बड़े विनित भाव से उनकी सेवा की और उनको सम्यक रूप से, माने विविध प्रकार से उनको खीर, नाना प्रकार के उत्तम अन्न, पुए, लड्डू, पकोड़े इत्यादि खिलाए। मुंह में पानी छूट गया। और ये बच्चे ने भी साथ में खाया, चंद्रहास ने भी। अब भोजन के बाद तृप्त होकर सभी ने आचमन किया, अपना मुंह प्रक्षालन किया, हस्त प्रक्षालन किया। और पहले ऐसे विधि हुआ करती थी कि जो ब्राह्मण आते थे उनको भोजन के पश्चात उनको केसर मिश्रित चंदन, सुगंधित चंदन लगाते थे माथे पर और उनको शरीर से कहीं और भी ऑफर करते थे। फिर उनको वस्त्र, आभूषण, गाय इत्यादि भेंट करते थे। तो ऐसे ही दुष्ट बुद्धि ने वो यथा विधि कार्य को संपन्न किया। इन मुनियों का ध्यान बच्चे में था। बड़ा दुष्ट बुद्धि, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, तुम सुख पाओ और तुम्हारी आयु लंबी हो, यही तो वो चाहता था। जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनको यही चाहिए कि इस लोक में मैं सुख पाऊं, लंबी आयु हो मेरी, ठीक है, वैसा इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे और महत्वपूर्ण बातें भी हैं। ये मुनिजन पूछ रहे कि तुम्हारे सामने खड़े हुए ये जो पांच वर्ष का बालक है कहां से आया, इसका कुल क्या, इसका परिचय क्या, किसका पुत्र है? ये सब बात हमें बताओ। मुनियों के ऐसा पूछने पर दृष्ट बुद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो राजा का मंत्री हूं, मैं तो राजकार्य संभालता हूं, इस नगर में पता नहीं ऐसे कितने अनाथ बालक होंगे जो ऐसे आते जाते रहते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन। तो मुनियों ने कहा कि इस मनोहर बालक का शरीर सभी शुभ लक्षणों से प्रकाशित हो रहा है, सभी शुभ लक्षणों से संयुक्त है, और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी राजश्री का स्वामी होगा। और मैं तुम्हें ये हम लोग तुम्हें ये सुझाव देते हैं कि तुम इसका पालन पोषण करो और तुम्हारी लक्ष्मी का, तुम्हारे धन का उत्तराधिकारी बनेगा। जब मुनि लोग ऐसा बोले तो दृष्ट बुद्धि के ऊपर जैसे वज्रघात हुआ, उसको बड़ा क्रोध आया मुनियों की बात सुनकर, वो बड़ा कुपित हो गया और उसने इन ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी घर से रवाना कर दिया। तो मुनि लोग जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। अभी ये मुनियों की बात सुनकर दुष्ट बुद्धि बड़ा चिंतित हो गया, मन ही मन सोचने लगा कि मुनियों ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो मुनियों ने एक प्रकार की भविष्यवाणी की। मन में विचार करने लगा कि मैं किस प्रकार से मुनियों की बात को व्यर्थ कर दूं, गलत कर दूं। और ऐसे सोचते सोचते दिन रात उसको खाना पीना कुछ भाए नहीं, रात में नहीं आए, और विचार करते करते उसने उस छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक को मार देने का ही विचार किया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बोले जीवित रहेगा तो मेरे राजश्री का स्वामी बनेगा ना। ये बड़ा लोभी था, इस मूर्ख को नहीं पता कि वैसे भी हम तो छोड़कर जाने वाले हैं कि कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी बने ही वाला है हमारे धन का। तो उसने आतुरता पूर्वक चांडालों को बुलवाया, बड़े भयंकर यमदूत जैसे दिखने वाले, और उनको कहा कि पशु की हत्या करने वाले कसाईयों, मेरी बात गौर से सुनो, इस बालक को यहां से लेकर जाओ, अपने साथ तीखी धार वाली तलवारें लेकर जाओ और किसी गहन वन में जाकर इसकी हत्या कर दो, और इसकी हत्या करने के बाद वो ऐसा चिन्ह लाना जिससे मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाए कि आपने इसको मार डाला। अगर आपने कार्य संपन्न किया तो मैं आपको एक घड़ा दूध देने वाली अनेक भैंस आपको दूंगा पुरस्कार के रूप में। तो नारद जी कह रहे हैं कि राजमंत्री की बात सुनकर चांडाल बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज तो अच्छा मौका है, इतनी सारी भैंसे मिलने वाली है, दूध खूब पैदा करवाएंगे और खूब धंधा करेंगे, फिर दूध बेचकर पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने बहला फुसलाकर इस बच्चे को पकड़ लिया, चंद्रहास को, और फिर मदमत तो हुए, बड़े गहन वन में गए। तो हॉरर मूवी में दिखाते हैं वैसे यहां उस वन का वर्णन किया है कि वहां झुंड के झुंड भयानक पक्षी की आवाजें आ रही थी, बड़े भयानक जानवर वहां आवाज कर रहे थे, भूत प्रेत वहां आवाज कर रहे थे, जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, और पूरा वन जैसे नरक की तरह कांटों से भरा हुआ था। वन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इस संसार में सब कुछ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। तो तामसिक वन भी होते हैं जहां नरपक्षी पेड़ भी होते हैं, अफ्रीका के डिस्टेंट एकदम दूर जंगल में नरपक्षी पेड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं, जहां अगर कोई उनके पास मनुष्य भी जाता है उनको खा लेता है, वो तामसिक वन है इस प्रकार। तो ऐसे कुछ वन में यीशु धार्मिक का छोटा बेटा जो हफ्ता हुआ था उसको लेकर चांडाल वहां गए और उसको मारने के लिए अपने ज्ञानों से तीखी धार वाली तलवारें निकाली। अब यहां थोड़ा सा फ्लैशबैक का वर्णन किया कि पहले किसी के सामने, अभी तो चंद्रहास के सामने काल खड़ा था, यमदूत खड़े, जब यमदूत जैसे ही खड़े थे तो पहले किसी समय नगर में घूमते समय दूसरे समवयस्क बच्चों के साथ खेलते समय चंद्रहास के हाथों में श्री हरि की शालग्राम शिलामयी सुंदर प्रतिमा हाथ में आ गई थी। शालग्राम शिला होती है ना, जो हरि से अभिन्न है, विष्णु से अभिन्न है, शालग्राम शिला देखा है ना आपको, चिकना लगता है दिखने में और बड़ा सुंदर होता है, गोल गोल गोल, एग्जैक्टली ओवल शेप होता है, काले रंग का या ग्रे कलर होता है, डार्क ग्रे कलर। तो चंद्रहास पहले किसी दूसरे अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। तो गुल्ली डंडा, उसमें डंडा जो था वो तो लकड़े का था और गुल्ली जो पत्थर की बनाई हुई थी, ऐसे गुल्ली डंडा खेलता था। तो खेलते समय किसी बच्चे ने उसको दिया था हाथ में शालग्राम शिला, उसको गुल्ली समझ कर, और बोला कि इससे खेलते हैं। तो उस समय चंद्रहास ने उसको गौर से देखा था, तो वो बोला कि ये तो चित्र विचित्र, मैंने तो बहुत सारे पत्थर देखे हैं अभी तक, लेकिन ये तो बड़ा मनोहर पत्थर है, इसके साथ मैं अभी नहीं खेलूंगा, ये तो मेरे मन को लुभाने वाला है। चंद्रहास ने क्या किया, चंद्रहास ने इस शालग्राम शिला की प्रशंसा की, ठीक नहीं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, गुणगान किया, ऐसा कहके उस समय उस वो जो गुंडी थी पत्थर उससे वो नहीं खेला। ऐसा करके वो बोला कि हम दूसरे जब गुंडी टूट जाएगी तो फिर इसके साथ खेलेंगे, ऐसा बोलकर उसने अपने मुंह में डाल दिया चंद्रहास ने इस पत्थर को, शालग्राम को, उस और फिर बच्चों के साथ खेलने लगा। तो नारद मुनि कह रहे कि जैसे पूर्व काल में ध्रुव ने मेरे प्रसाद से नारायण को प्रसन्न कर लिया था, उसी प्रकार चंद्रहास ने उस समय पूर्व काल में जो शालग्राम सेवा जो की थी, शालग्राम का सेवन तो किया ना उसने, उसने उसको टूटने से बचा लिया, उस समय मुंह में डाल दिया था टूटने से, नहीं तो वो बच्चे उसको खेलते खेलते तोड़ डालते, और उसका गुणगान किया था। तो उसके प्रभाव से चंद्रहास ने देवेश्वर भगवान नारायण का ध्यान किया। ऑफकोर्स ये इतना भी इजी नहीं होता है, डेफिनेटली चंद्रहास का कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होगा। क्या कह रहे हैं चंद्रहास, 5 साल का बच्चा, डोंट फॉरगेट ही जस्ट 5 ईयर ओल्ड। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन चांडला चित धारे खंगे घंती जगतपते। वो कह रहा है कि भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाले हैं श्री कृष्णा, जगदीश्वर, वासुदेव, जनार्दन, जगतपते, ये चांडाल मेरे सामने काल के समान तीखी धार वाली तलवार लेकर खड़े हैं। जिस समय आपने पहले ध्रुव, प्रहलाद और गजराज को संकट से उबारा था, उसी प्रकार आज ही मेरी रक्षा करिए। ध्रुव महाराज वन में गए थे, वन में अकेले तप करते थे, और वन के सभी हिंसक पशु पक्षियों के मध्य में रहकर वो तपस्या करते, उस समय केवल नारायण ने उनकी रक्षा की थी, नहीं तो जंगल में पशु पक्षियों से कौन बच सकता है, जंगली जानवर जो होते हैं। तो ध्रुव की भगवान ने रक्षा की थी। प्रहलाद महाराज की कथा फेमस है कि हिरण्यकश्यप ने उनको उबलते हुए तेल में डाला, ऊपर पर्वत के नीचे फेंक दिया, कांटे वाला जो सींग था उसमें डाल दिया उसको, फिर अनेक तरह से प्रताड़ित किया था प्रहलाद महाराज, उनको मारने का प्रयास किया था, सब अवसर पर भगवान ने उनकी रक्षा की थी। गजराज जो भागवतम के 8वें स्कंद या 9वें स्कंद में कथा आती है, 8वें स्कंद पर भी, उसमें गजराज और ग्राह जो मगरमच्छ था दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय गजराज ने नारायण की शरण ली थी और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे वहां और उनको अभिदान दिया था, उनको प्राण की रक्षा की थी। उसी प्रकार से बच्चा उन लीलाओं को ध्यान करके श्रवण कर, पहले श्रवण किया होगा इन कथाओं का, क्योंकि ये बच्चा सुधार्मिक जो थे, जैसे उनका नाम था सही में सुधार्मिक थे, उनका जो बाप था तो उनके उनका ही खून दौड़ रहा है उनके शरीर में, और पहले इन कथाओं का श्रवण किया होगा, तो उन कथाओं को याद करके वो सर्वव्यापी नारायण को याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सभी जगह विराजमान है अपने चतुर्भुज स्वरूप में, क्षीर दक्षा विष्णु जो बोलते हैं, एक एक अणु में भी विद्यमान है। तो बोल रहे हैं कि उन सर्वव्यापी नारायण को मैं नमस्कार अर्पण करता हूं, वो स्वीकार करें। फिर चंद्रहास आगे कह रहे हैं कि जो अनाथ है या कुत्सित योनि में पड़े हैं या जो दीनहीन है, उन दीनहीन के लिए एक ही व्यक्ति आश्रय है, वो है जनार्दन। वो एक हिंदी मूवी में सॉन्ग भी था, याद नहीं आ रहा अभी, कुछ उर्दू उसमें वर्ड्स थे, तो जिसका जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, समथिंग लाइक दैट, है ना, वो सॉन्ग था एक फेमस। तो दीन बंधु दीनानाथ कहके वो गुणगान करने लगा और कहने लगा कि गोविंद मैं अनाथ हूं, ना ही तो मेरे माता है, ना ही पिता है, और ना ही वो धाई रही, अभी आप ही एक मेरे सहारा हो, आप ही मेरी रक्षा करो। यदि आप मेरे संकट से रक्षा नहीं करोगे तो मेरी रक्षा और कौन करेगा, मैं तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसलिए आप इस विपत्ति से मुझे उबारिए। ऐसा चंद्रहास अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करा, ऐसे समय पर सच्चे दिल से ही प्रार्थना निकलती है ना, जब सामने यमदूत आकर खड़े हैं तो उस समय सच्चे दिल से ही प्रार्थना निकलती है। इस समय अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें केवल ढोंग होता है, दंभ करते हैं हम। इसलिए भागवत में बार बार कहा गया है कि दंभ रहित होकर भक्ति करो, केवल दिखावे का भक्ति नहीं। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं उस समय सही में वो भाव होना चाहिए। तो भगवान ने चंद्रहास की इस प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है और भगवान अपने नाम से अभिन्न है। भगवान के नामों का जप करा है चंद्रहास। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने उन चांडालों को मुंह में डाल दिया, इनको मान, चांडालों इनको मानने की उद्देश्य से आए थे यहां, लेकिन वो लोग अभी अंदर अंदर इस प्रकार से बात करने लगे, भाई हो कितना सुकुमार बालक है, जिसके हाथ देखो उसके नीच तक फैले हुए हैं, उसके घुटनों तक फैले हुए हैं, उसका रूप मन को लुभाने वाला है। इस अवस्था में पुरुष बुद्धि ने हमें कैसे आज्ञा दे दी कि इसको हम वन में जाकर मार डालें। दुष्ट बुद्धि सही में पापी है, और हम लोग भी देखो कितने मूर्ख हैं कि हम लोग पूर्व काल में नाना प्रकार के पापों के फलस्वरूप ये चांडाल जो उत्पन्न हुए हैं, और इस बच्चे को मारने से तो हमें और भी पाप लगने वाले, पता नहीं हमारी क्या दुर्दशा होगी। या तो फिर ये समझ में नहीं आ रही कि बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप हो किया था कि वह आज अनाथ हो गया, इस वन में हमारे सामने आ गया। तो इस प्रकार से ये लोग अंदर अंदर बातें करने लगे, माने उनकी बुद्धि विरिन कोट भ्रमित हो गई। अभी ठीक बुद्धि हो गई, लेकिन दृश्य बुद्धि के हिसाब से बुद्धि भ्रमित हो गई। और अभी इनकी नजर पड़ी उसकी जो एक्स्ट्रा जो फिंगर थी, टो जो था उसका एक्स्ट्रा, जो दाएं पैर में जो एक्स्ट्रा जो अंगुली थी उसके ऊपर नजर पड़ी, क्योंकि दृश्य बुद्धि ने क्या कहा था कि उसको मार दिया ऐसा कोई सिद्ध करने वाला, ऐसा कोई चिन्ह लेकर आना। तो भगवान ने ऐसी बुद्धि दी इनको चांडालों को कि चलो अभी दृष्ट बुद्धि को मूर्ख बनाते हैं। तो इस बच्चे को मारा तो नहीं, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा कर उसको कोई नहीं मार सकता। चांडालों ने उसके जो एक्स्ट्रा जो जो उसका अंगुली थी उसको काट लिया, और काट कर वहां से चल दिए जंगल से, और जंगल में बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया, और लाकर ये जो अंगुली थी वो दृष्ट बुद्धि को दिखा दी। उसे देखकर कुत्सित बुद्धि वाला दुष्ट बुद्धि मन में फूला नहीं समाता था। वो सोचने लगा कि मैंने मुनिजनों की वाणी को व्यर्थ कर दी, अभी मेरी राजलक्ष्मी का ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ऐसा सोचकर उसने चांडालों को, जैसे उसने पहले वचन दिया था, बहुत सारी भैंसे पुरस्कार उसने उनको भेंट की, और चांडालोग भी उसको पाकर प्रसन्न होकर वहां से चले गए, क्योंकि उनको तो भैंसे भी मिल गई और बच्चा भी बच गया, दोनों तरफ से उनको तो फायदा हुआ, क्योंकि बच्चे इनका कल्याण हो गया। भगवान ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया तो वो पाप करने से बच गए, और इसने महान वैष्णव को नहीं मारा, उसको बख्श दिया, तो वो अपने आप में एक सुकृति है, तो इनको दोनों तरफ से फायदा हुआ। तो आज की कथा हम यहां समाप्त करते हैं। ये 10 अध्याय में से पहला अध्याय का मैंने आपको वर्णन किया आज। अगले रविवार को हम इसका आगे वर्णन करेंगे कि चंद्रहास वन में अकेला है, क्या करता है, उसकी क्या उसको प्रारब्ध उसको कहां कहां लेकर जाता है, इसका वर्णन हम अगले रविवार को करेंगे। ये कथा कुछ 8-9 रविवार तक चलेगी, कम से कम 7 रविवार तक चलेगी, इसलिए गौर से इस कथा का श्रवण करिए, क्योंकि ये कथा वापस मुझे आपको सुनाने का अवसर मिले ना मिले, आप लोगों को सुनने का अवसर मिले ना मिले, क्योंकि किसी और पुराण इतिहास में इस कथा का वर्णन नहीं किया है, केवल जैमिनी महाभारत में ही किया, इसलिए इस कथा अति दुर्लभ कथा को आप श्रद्धा से श्रवण करिए। आपका भी लाभ है और मेरा भी लाभ है। हरे कृष्ण।